शांति, ओम शांति। बाबा हम बच्चों को रोज रोज भिन्न भिन्न रूप से इस कलयुगी दुनिया से वैराग्य दिलाते हैं। हर मुरली में बाबा ऐसी बातें कहते हैं जिससे हमें इस कलयुगी दुनिया से वैराग्य आए। कभी विनाश की बात कहते हैं, कभी दुनिया के हालातों की बात कहते हैं, कभी बाबा कहते हैं ये कांटों का जंगल है, कई शब्द बाबा यूज करते हैं। तो आज बाबा ने कौन सा शब्द यूज किया होगा? बहुत समय बाद ये शब्द आया है, ये दुनिया क्या बन गई है? किचरे का डब्बा, किचरे का डब्बा, कूड़े का डब्बा। कूड़े का डब्बा होता है ना, उसमें सब किचरा डालते रहते हैं, क्या क्या किचरा डालते रहते हैं, और फिर उसको जलाया जाता है, क्योंकि किचरे को रखेंगे तो नहीं, फिर उसको जलाते हैं। तो ये किचरे का डब्बा है, तो फिर इस किचरे के डब्बे में जो किचरा है उसका तो वो तो जल जाएगा, फिर नई दुनिया आएगी। तो बाबा ने एक मिसाल दी है, उस समय वो बात हुई थी कि एक पैदा हुई बच्ची थी, अब वो पैदा हुई लेकिन लड़की पैदा हुई, तो कई बार होता है ना, तो घर में कहते हैं कि भाई ये लड़की नहीं चाहिए, लड़का चाहिए, लड़की होगी तो तुमको घर से निकाल देंगे या उसको खत्म कर देंगे, मार डालना है, बहुत कुछ था। तो अगर लड़की पैदा हुई तो तुम लड़की को लेके चले जाओ, निकल जाओ इस घर से, या तो उसको किसको दे दो या मार डालो। तो माँ ने क्या किया, लड़की तो पैदा हुई तो उसने क्या किया, घर तो लेके नहीं जा सकती थी, तो उसने किचरे के डब्बे में डाल दिया उस पैदा हुई बच्ची को। तो अब डाल करके वो आ गई घर, तो घर वालों ने कहा ठीक है, हाँ मार डाला होगा, पर उसने किचरे के डब्बे में डाल दिया। तो राहगीर कोई था, उसने आवाज सुनी बच्चे के रोने की आवाज किचरे के डब्बे से, कई बार ये न्यूज आती है। तो उसने उस बच्ची को उठाया, और लड़की थी, माँ बाप को, बाप को लड़की नहीं चाहिए थी, तो परंतु उस व्यक्ति ने उठाया, और उसको पता था कि एक परिवार एक युगल है, उनको कोई बच्चा नहीं है, तो इसलिए वो बच्चा चाहते हैं। तो उसने उठाया उस भाई ने, और सोचा कि मैं उस युगल को दूंगा क्योंकि उनको कोई बच्चा नहीं है, बड़ी प्यारी बच्ची थी, और उसको जाकर के दिया। और उस कपल ने, उस युगल ने उस बच्ची को पाला, और इतनी अच्छी बन गई, जो लायक बन गई, लेकिन वो कुछ किचरे के डब्बे से निकले। तो बाबा भी हमें क्या कहते हैं, तुम भी अभी किचरे के डब्बे में पड़े हो, तो भगवान आकर के तुमको इस किचरे के डब्बे से निकाल रहे हैं। निकाला है ना हम सबको, क्या कहाँ पड़े थे दुनिया में, किचरे में ही पड़े थे, और बाबा ने हमें निकाल करके कितना गुलगुल बनाया, कांटे बन गए थे और कांटे से फूल बनाया। तो बाबा का हम कितना शुक्रिया करते हैं, करते हैं शुक्रिया, रोज करते हैं, जो रोज बाबा को शुक्रिया करते हैं हाथ उठाओ। सचमुच बहुत अच्छा। हम तो टीचर बहनों को देखते हैं, वो कहते हैं अब जब वो जब ट्रेन में सफर करते हैं, बच्चा इतना रोता है, इतना रोता है, इतना रोता है, कहते बाबा, वो कहते बाबा आपने हमको बचा दिया, बचा लिया है ये सब। नहीं तो क्या क्या तकलीफ तो होती है बच्चे को, पैदा करो फिर बड़ा करो, क्या नहीं होता है, लेकिन बाबा ने हमको बचा लिया। ऐसे ना टीचर बहने, तो समझ से बाबा ने बचा लिया हमें, हाथ उठाओ। देखो सब टीचर यही एक ही स्वर में कहेगी, भाइयों को तो बचा ही लिया है, लेकिन टीचर्स बहने को बाबा खास कहते, वो तो खास कहती है बाबा ने हमको बचा लिया, बाबा ने हमको बचा लिया। तो सचमुच आज दुनिया क्या बन गई है, तो एक तो बाबा को हम थैंक्स दे, और दूसरा जो बाबा हमें श्रीमत देते हैं उस पर हम चले। ऐसे नहीं केवल थैंक्स दो और श्रीमत पर नहीं चलो। इसलिए बाबा ने कल भी कहा चारों सब्जेक्ट्स में पास होना है, पास विद ऑनर बनना है, माना उसके लिए श्रीमत पर चलना होगा। अगर श्रीमत पर चलेंगे तभी तो पास विद ऑनर होंगे, तभी तो कहेंगे कि हम बाबा के आज्ञाकारी बच्चे हैं, क्योंकि बाबा की श्रीमत पर है, तभी तो ऊंच पद पाएंगे। आज बाबा ने बहुत बड़ी बात भी कह दी है कि जो जूनियर है उनको सीनियर का सम्मान करना चाहिए। ऐसे नहीं हाँ मैं तो ज्यादा होशियार हूँ, मैं तो ये हूँ, इसको क्या पता, लेकिन बाबा ने उनको नियुक्त किया है तो उसका सम्मान करना चाहिए। जैसे बाबा के अव्यक्त होने के बाद दीदी दादी को बाबा ने आगे रखा और बाबा ने कहा अभी ये बाप दादा बैकबोन बन जाएंगे और ये दीदी दादी आगे होंगे और ये इनके द्वारा बाबा कराएंगे। तो बाबा भी कहते हैं तो जूनियर्स का जो ऐसा उनका संस्कार हो जो सीनियर को वो सम्मान दे। हाँ तो सम्मान कैसे देना होता है, बाबा ने दादी प्रकाशमणि का मिसाल दिया, तो उनको सम्मान दे, ऐसे नहीं कि जो आया बोल दे बड़ों को। तो आज बाबा ने इस पर भी बड़ी शिक्षा दी है, सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज 4/4/2025 है। मीठे बच्चे अभी तुम पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करते हो। पुरुषोत्तम है देवताएं, ब्राह्मण पुरुषोत्तम ही कहला सकते हैं, पुरुषोत्तम है देवताएं। हम पुरुषार्थ कर रहे हैं पुरुषोत्तम बनने का, क्योंकि वो है पावन, तुम पावन बन रहे हो, इसीलिए हम अपने को पुरुषोत्तम नहीं कह सकते। तो अभी तुम पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करते हो। पुरुषोत्तम है देवताएं, क्योंकि वो है पावन, तुम पावन बन रहे हो। प्रश्न है, बेहद के बाप ने तुम बच्चों को शरण क्यों दी है। बाबा के बच्चे बने, बाबा की गोद ली, बाबा ने हम बच्चों को गोद लिया है, तो बाबा कहते हैं, प्रश्न है, बेहद के बाप ने तुम बच्चों को शरण क्यों दी है। उत्तर, क्योंकि हम सब रिफ्यूज माना किचरा, किचरे के डब्बे में पड़े थे। बाप हमें किचरे के डब्बे से निकाल गुलगुल बनाते हैं, आसुरी गुण वालों को दैवी गुणवान बनाते हैं। तो ड्रामा अनुसार बाप ने आकर हमें किचरे से निकाल एडॉप्ट कर अपना बनाया है। गीत है, ये कौन आया आज सवेरे सवेरे, ये गीत है। ओम शांति। रात को दिन बनाने के लिए बाप को आना पड़े। अभी तुम बच्चे जानते हो कि बाप आया हुआ है। पहले हम शूद्र वर्ण के थे, शूद्र बुद्धि थे, हम शूद्र वर्ण के थे, शूद्र बुद्धि थे। वर्णों वाला चित्र भी समझाने के लिए बहुत अच्छा है। बच्चे जानते हैं हम इन वर्णों में कैसे चक्र लगाते हैं। अभी हमको परम पिता परमात्मा ने शूद्र से ब्राह्मण बनाया है। कल्प 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 के संगम युगे हम ब्राह्मण बनते हैं। ब्राह्मणों को तो पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे, पुरुषोत्तम तो देवताओं को कहेंगे। ब्राह्मण यहाँ पुरुषार्थ करते हैं पुरुषोत्तम बनने के लिए। पति से पावन बनने लिए ही बाप को बुलाते हैं, तो अपने से पूछना चाहिए कि भगवान को बुलाते हैं पति से पावन बनने के लिए। तो बाबा कहते हैं तो अपने से पूछना चाहिए हम पावन कहाँ तक बने। बुलाया पति से पावन बनाने लिए, वो बाप आया है पति से पावन बना रहा है, तो अपने से पूछना चाहिए हम पति से पावन कितना बने हैं, हम पावन कहाँ तक बन रहे हैं। स्टूडेंट भी पढ़ाई के लिए विचार सागर मंथन करते हैं ना, समझते हैं इस पढ़ाई से हम ये बनेंगे। कितना ऊंचा लक्ष्य दिया है बाबा ने, तो हमें अपने आप को देखना, हम कहां तक उस लक्ष्य के नजदीक पहुंचे हैं। तो समझते हैं इस पढ़ाई से हम ये बनेंगे। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि अभी हम ब्राह्मण बने हैं, फिर किस लिए ब्राह्मण बने हैं? देवता बनने के लिए। किस लिए ब्राह्मण बने हैं? बस सिंपल सी बात है, देवता बनने के लिए। पर ये छोटी बात नहीं है, कहने में तो आएगा देवता बनने के लिए, लेकिन कहाँ तक वो लक्षण है हमारे अंदर, बाबा कहते वो भी देखना है। अभी हम ब्राह्मण बने हैं देवता बनने के लिए। ये है, ये ब्राह्मण जीवन क्या है? अमूल्य जीवन। क्यों अमूल्य जीवन? क्योंकि तुम ईश्वरीय संतान हो। सत्युग में तो देवताओं के संतान बनेंगे, या ईश्वरीय संतान हो, इसलिए ये अमूल्य जीवन है। ईश्वर तुमको राजयोग सिखला रहे हैं, पतित से पावन बना रहे हैं, पावन देवता बनते हैं। वर्णों पर समझाना बहुत अच्छा है, सन्यासी आदि इन बातों पर नहीं ठहरेंगे। अगर किसी सन्यासी को कहो कि हम देवता थे, फिर क्षत्रिय बने, वैश्य बने, शूद्र बने, आत्मा इन वर्णों से गुजरती है, तो वो कभी मानेंगे नहीं। क्यों सन्यासी नहीं मानेंगे? क्योंकि वो समझते आत्मा तो निर्लेप है, वो थोड़ी कोई ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई वर्णों से निकलती है। आत्मा तो बस बुद्बुदा है, वो फिर जाके लीन हो जाएगी, वो तो सदा पावन है। तो बाबा कहते हैं सन्यासी इन बातों में नहीं ठहरेंगे। बाकी 84 जन्मों का हिसाब समझ सकते हैं, चलो वो माने भी कि हाँ ठीक है 84 जन्म है। अब ये भी समझ सकते हैं कि हम सन्यास धर्म वाले 84 जन्म नहीं लेते हैं। हाँ ये तो मानेंगे जरूर, क्योंकि बाद में आता है, शंकराचार्य आने के बाद सन्यास धर्म शुरू होता है, तो इसलिए 84 जन्म तो नहीं लेंगे। इस्लामी बोधी आदि भी समझेंगे हम 84 जन्म नहीं लेते हैं, वो भी बाद में आते हैं। हाँ पुनर्जन्म लेते हैं, इतना जरूर कहेंगे कि पुनर्जन्म लेते हैं, परंतु कम, पूरे 84 तो नहीं लेंगे। तुम्हारे समझाने से झट समझ जाएंगे, समझाने की भी युक्ति चाहिए। हाँ कहिए, कहते हैं क्यों भगवान के पास ऐसा पक्षपात है कि हम 84 जन्म नहीं लेंगे, हम बाद में आएंगे? तो फिर उनको समझाते, भगवान के पास पक्षपात नहीं है, भगवान तो सबको कहते हैं देवता बनो, आप भी देवता बनो, तो क्यों नहीं लेंगे आप 84 जन्म? जरूर लेंगे। तो देखो हमारे डबल विदेशी भाई बहन ऐसे ही कहते हैं ना, भले जन्म किसी और धर्म में लिया, लेकिन वो कहते हमने 84 जन्म लिए हैं क्योंकि हम देवता धर्म के हैं। तो बाबा कहते तो युक्ति से समझाना होता है, तो समझाने की भी युक्ति चाहिए। तुम बच्चे यहाँ सम्मुख बैठे हो तो बाबा बुद्धि को रिफ्रेश करते हैं। मधुबन में आते हैं तो बाबा सबकी बुद्धि को रिफ्रेश करते हैं कि ये धारणा करो, बुद्धि में यही ख्याल चलता रहे, हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, कैसे शूद्र से ब्राह्मण बने हैं, ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण है। अब ब्रह्मा कहाँ से आया? चलो ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण है तो ब्रह्मा कहाँ से आया? तो बाप बैठ समझाते हैं, हम इनका नाम ब्रह्मा रखते हैं ना, कोई ब्रह्मा रूप में पैदा नहीं हुआ था, तो वो साधारण मनुष्य कलयुग अंत में अंतिम मनुष्य भी वो, तो पहला मनुष्य भी वो, आदि पुरुष भी तो अंतिम पुरुष भी, जिसके तन में बाबा प्रवेश करते हैं, नाम ब्रह्मा रखते हैं। तो अब ब्रह्मा कहाँ से आए? तो बाप बैठ समझाते हैं, हम इनका नाम ब्रह्मा रखते हैं। ये जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, ये फैमिली हो गए, हम सब परिवार हैं, फैमिली हो गए, तो जो एडॉप्टेड है, एक शारीरिक माता पिता के तो इतने बच्चे नहीं होंगे ना, तो जो एडॉप्टेड है, बाप ही एडॉप्ट करेंगे, उनको बाप कहा जाता है, दादा नहीं कहेंगे। दादा माना बड़ा भाई, तो बाप कहा जाएगा, शिव बाबा ने हमको एडॉप्ट किया है पर थ्रू ब्रह्मा, तो ब्रह्मा दादा हो गया, बड़ा भाई हो गया, प्रकृति की ब्रह्मा को भी अडॉप्ट किया, तो अडॉप्ट किया शिव बाबा ने। कई बार बाबा ये भी कहते तुम तो अनादि बच्चे हो, शिव बाबा के और ब्रह्मा के आप अडॉप्टेड बच्चे हो और शिव बाबा के अनादि बच्चे हो, लेकिन शिव बाबा ही तो अडॉप्ट करते हैं ब्रह्मा द्वारा, तो दोनों बातें हो सकती है। तो उनको बाप कहा जाता है, दादा नहीं कहेंगे, बाप को तो बाप ही कहा जाता है ना, मिल्कियत मिलती ही बाप से है। कोई चाचा मामा या बिरादरी वाले भी एडॉप्ट करते हैं, अगर एडॉप्ट किसी ने किया भले वो चाचा हो मामा हो कोई भी हो, वो पिता नहीं है लौकिक, पर चाचा ने बच्चे को एडॉप्ट किया तो फिर वर्षा तो उसे ही मिलेगा, वही बाप बन जाता है। तो कोई चाचा मामा व बिरादरी वाला वाले भी एडॉप्ट करते हैं। जैसे बाप ने सुनाया था एक बच्ची, वो बाबा में कहानी बताते, एक बच्ची कीचड़े के डब्बे में पड़ी थी, वो कोई ने उठाकर जाकर किसको गोद में दी, क्योंकि उनको अपना बच्चा नहीं था, तो बच्ची जिनकी गोद में गई उनको ही मम्मा बाबा कहने लग पड़ेगी ना, उनको ही माता पिता कहेगी जिनकी गोद में गई। और उस बच्ची को तो अपने असली माता पिता का तो पता ही नहीं होगा, तो वो तो किचड़े के डब्बे में पड़ी थी, पैदा हुई और किचड़े के डब्बे में डाल दिया, तो जिसने अडॉप्ट किया उनको ही माता पिता कहने लग पड़ेगी ना। ये फिर है बेहद की बात, किचड़े के डब्बे में पड़े थे, बाबा ने हमको अडॉप्ट किया तो हाँ हम उनके ही बच्चे हो गए। तुम बच्चे भी जैसे बेहद के किचड़े के डब्बे में पड़े थे, विषय वैतरणी नदी में पड़े थे। कभी बाबा इस दुनिया को क्या कहते हैं, विषय वैतरणी नदी, कुंभी पाक नरक, ये नरक के नाम है, नरक के अनेक नाम है, उसमें ये दो नाम है, विषय वैतरणी नदी कुंभी पाक नरक। तो बाबा कहते हैं ये फिर है बेहद की बात, तुम बच्चे भी जैसे बेहद के किचड़े में के डब्बे में पड़े थे, विषय वैतरणी नदी में पड़े थे, कितने गंदे हुए पड़े थे। विषय वैतरणी नदी हो, गंदा नाला हो, एकदम बांस आती हो, किचड़ा ही किचड़ा उसमें, और उसमें कोई चीज हो तो अगर निकालेंगे तो कितनी गंदी होगी वो चीज, तो कितने गंदे हुए पड़े थे। ड्रामा अनुसार बाप ने आकर उस किचड़े से निकाल तुमको एडॉप्ट किया है। तमो प्रधान को किचड़ा ही कहेंगे ना, किचड़ा है, तमो प्रधान चीज है, सड़ी हुई चीज है, बांस आती है, तो किचड़ा ही कहेंगे ना। आसुरी गुण वाले मनुष्य है दे अभिमानी, काम क्रोध भी बड़े विकार है ना, तो तुम रावण के बड़े रेफ्यूज में पड़े थे। रेफ्यूज बिन होता है माना किचड़े का डब्बा, तो रेफ्यूज किचड़े को भी कहते हैं। तो तुम रावण के बड़े रेफ्यूज में पड़े थे, किचड़े के डब्बे में पड़े थे, वास्तव में रेफ्यूजी भी तुम हो। अब ये दोनों इंग्लिश शब्द है, इंग्लिश रेफ्यूज माना किचड़ा, और रेफ्यूजी जब कहते हैं माना शरणार्थी, तो शरणार्थी भी है, बाबा की शरण में आए हैं और किचड़े के डब्बे में भी थे, तो वास्तव में रेफ्यूजी भी हो। अब तुमने बेहद के बाप की शरण ली है, रेफ्यूज से निकल, किचड़े के डब्बे से निकल, गुल गुल देवता बनते हो। इस समय सारी दुनिया रेफ्यूज के बड़े डिब्बे में पड़ी है, किचड़े के डब्बे में पड़ी है, तो बाप आकर तुम बच्चों को किचड़े से निकाल अपना बनाते हैं, परंतु किचड़े में रहने वाले ऐसे हिरे हुए हैं, ऐसे हिरे हुए हैं। मिसाल बाबा देते हैं ना कि नारद मुनि ने कहा स्वर्ग में एक सीट खाली है, तो ये जो किचड़े में थे निष्ठा के कीड़े, उनसे पूछा कि एक सीट खाली है तुम चलोगे, निष्ठा के कीड़े उनको कहा, उन्होंने कहा वहां निष्ठा मिलेगी, निष्ठा उनको चाहिए, उनको स्वर्ग नहीं पसंद है, वो किचड़ा ही पसंद है। तो बाबा कहते हैं बाप आकर तुम बच्चों को किचड़े से निकाल अपना बनाते हैं, परंतु किचड़े में रहने वाले ऐसे हुए हुए हैं, जो पड़े या किचड़े में उसमें उनको किचड़ा ही पसंद है, तो ऐसे किचड़े में रहने वाले हिरे हुए हैं जो निकालते हैं फिर भी किचड़ा ही अच्छा लगता है, फिर भी किचड़ा ही अच्छा लगता है। तो बाप आकर बेहद के किचड़े से निकालते हैं, बुलाते भी हैं कि बाबा आकर हमको बुलबुल बनाओ, कांटे को कांटों के जंगल से निकाल फ्लावर बनाओ, खुदाई बगीचे में बिठाओ। ऐसे कहा था खुदाई बगीचे में बिठाओ। अब असुरों के जंगल में पड़े हैं, क्या है ये कलयुग, असुरों का जंगल, कांटों का जंगल। कई बार बाबा कहते जानवर तो जैसे जंगल होता है उसमें तो जानवर होते हैं, तो कलयुगी दुनिया ऐसे ही है। अब असुरों के जंगल में पड़े हैं, बाप तुम बच्चों को गार्डन में ले चलते हैं, बगीचे में ले चलते हैं। शूद्र से ब्राह्मण बने हैं फिर देवता बनेंगे, ये देवताओं की राजधानी है, स्वर्ग है देवताओं की राजधानी, ब्राह्मणों की राजाई है ही नहीं। हाँ, ब्राह्मण राजधानी में नहीं होते हैं, ब्राह्मणों को कोई राजाई नहीं है, केवल देवताओं को राजाई होती है। तो ब्राह्मणों की राजाई है नहीं, भल पांडव नाम है परंतु पांडवों को राजाई नहीं है। राजाई प्राप्त करने के लिए बाप के साथ बैठे हो, बाबा के साथ क्यों बैठे हैं हम, राजाई प्राप्त करने के लिए। बेहद की रात अपूरी हो बेहद का दिन शुरू होता है, तो गीत सुनाना कौन आया सवेरे सवेरे। सवेरे सवेरे आते हैं रात को मिटाए दिन बनाने, बाबा सवेरे सवेरे आते। संगम क्या है, हाँ बिल्कुल अमृत वेले से भी पहले, पर कहेंगे ना तो कि नया दिन लाते हैं। तो सवेरे सवेरे आते हैं रात को मिटाए दिन बनाने, अर्थात स्वर्ग की स्थापना नर्क का विनाश कराने। ये भी बुद्धि में रहे कि बाबा आया हुआ है नर्क का विनाश स्वर्ग की स्थापना करने, ये भी बुद्धि में रहे तो खुशी हो। जो नई दुनिया में ऊंच पद पाने वाले हैं, अब उनकी निशानी क्या होगी, पता चल जाता है कि ये ऊंच पद पाएगा, यही पता चलता है कि ये पद नहीं पाएगा, तो उसकी निशानी क्या होगी जो ऊंच पद पाने वाला है। जो नई दुनिया में ऊंच पद पाने वाले हैं वो कभी अपना आसुरी स्वभाव नहीं दिखाएंगे। अगर आसुरी स्वभाव दिखाते हैं, लड़ते हैं, कुछ उल्टा सुल्टा बोलते हैं, क्या क्या करते हैं, तो बाबा कहते हैं वो ऊंच पद तो पा ही नहीं सकेंगे। तो नई दुनिया में ऊंच पद पाने वाले हैं वो कभी अपना आसुरी स्वभाव नहीं दिखाएंगे। जिस यज्ञ से इतना ऊंच बनते हैं उस यज्ञ की बहुत प्यार से सेवा करेंगे, अगर सेवा ही नहीं करते तो ऊंच पद क्या पाएंगे, न ज्ञान है न योग है न धारणा है न सेवा है, तो वो ऊंच पद थोड़ी पाएंगे। तो वो अगर ऊंच पद पाने वाले हैं तो वो यज्ञ की बहुत प्यार से सेवा करेंगे, वो यज्ञ की बहुत प्यार से सेवा करेंगे। ऐसे यज्ञ में तो हड्डियां भी दे देनी चाहिए, इतना भगवान हमें हीरे जैसा बना रहे हैं तो ऐसे यज्ञ में तो हड्डियां भी दे देनी चाहिए। तो अपने को देखना चाहिए, इस चलन से हम ऊंच पद कैसे पाएंगे, चलन ही हमारी ठीक नहीं है, सब कंप्लेन करते हैं मेरे बारे में, तो हम ऊंच पद कैसे पाएंगे। बेसमझ छोटे बच्चे तो नहीं है ना, चलो बेसमझ या छोटा बच्चा है कुछ भी बोल देता है तो माँ बाप को बुरा नहीं लगता, अब वो बड़ा होकर के ऐसा कहे तो माँ बाप कहेगा ना ये तुमने क्या सीखा है। तो बेसमझ छोटे बच्चे तो नहीं है ना, समझ सकते हैं राजा कैसे प्रजा कैसे बनते हैं, वो राजाई के संस्कार रॉयल्टी के संस्कार यहाँ स्पष्ट दिखाई देंगे जिनको राजा बनना है। अब जब बनेंगे ही नहीं राजा तो वो रॉयल्टी के संस्कार उनमें कहाँ होंगे। तो बाबा कहते समझ सकते हैं राजा कैसे प्रजा कैसे बनते हैं। बाबा ने रथ भी अनुभवी लिया है क्योंकि बाबा का राजाओं महाराजाओं के साथ उठना बैठना था, बाबा देखते थे कितनी रॉयल्टी है उनके अंदर, लेकिन बाबा की रॉयल्टी उनसे भी ऊंची थी, बहुत रॉयल्टी थी बाबा में। तो वो राजा भी बाबा को कहते थे कि आपके अंदर जो राजाओं की रॉयल्टी है, इतनी शिष्टता है, इतनी सभ्यता है, हमारे से भी ज्यादा है, तो भगवान ने भूल कर दी, जो आपको राजा नहीं बनाए, व्यापारी बनाए और हमको राजा बनाया। तो बाबा उनको कहते थे नहीं नहीं, ये भगवान ने भूल नहीं की है, आपका ये पार्ट है हाँ, जो आपको राजा बनाया है, हमको व्यापारी बनाया है। तो बाबा कहते हैं बाबा ने रथ भी अनुभवी लिया है ना, जो राजाओं आदि को अच्छी रीति जानते हैं। इतनी रॉयल्टी थी बाबा में, जो राजा इतना सम्मान देते थे बाबा को। बाबा ने एक बार बताया कि बाबा को थोड़ा, बाबा को निमंत्रण दिया था राजाओं ने अपने राज दरबार में, लेकिन थोड़ा विलंब हो गया, माना थोड़ी देर हो गई उनके आने में। राज दरबार सब तैयार थी, लेकिन राजा ने कहा ऐसे नहीं शुरू करेंगे जब तक लखीराज बाबू ना आए, लखीराज बाबू आएगा फिर हम राज दरबार शुरू करेंगे। तो देखो इतनी, इतना बाबा को सम्मान देते थे राजाएं महाराजाएं। तो बाबा कहते हैं जो राजाओं आदि को अच्छी रीति जानते हैं, राजाओं के दास दासियों को भी बहुत सुख मिलता है। अब चले जाओ राजाओं के महलों में, कैसे दास दासियां होती है ना, तो राजाओं के दास दासियों को भी बहुत सुख मिलता है, वो तो राजाओं के साथ ही रहते हैं, परंतु कहलाएंगे तो दास दासी ना, भले राजाओं के साथ रहते हैं पर कहलाएंगे तो दास दासी। सुख तो है ना, जो राजा रानी खाए वो उनको मिले, वही खाएंगे ना, राजा रानी ने खा लिया फिर जो उनके दास दासी आए वो खाएंगे, वो उनको मिले। बाहर वाले थोड़ी खा सकते हैं, प्रजा थोड़ी आएगी राजाओं के महल में आकर के खाएंगी, वो दास दासियां जो महल में रहती है वही खाएंगे, बाहर वाले थोड़ी खा सकते हैं। दासियों में भी नंबरवार होते हैं, कोई श्रृंगार करने वाली दासी, कोई बच्चों को संभालने वाली दासी, कोई झाड़ू लगाने वाली भी होगी ना दासी, हाँ सब प्रकार की दासियों में। यहाँ के राजाओं को इतने दास दासियां हैं, कलयुग के राजाओं को भी इतने दास दासियां हैं, तो वहां कितने ढेर होंगे, कितने ढेर होंगे सतयुग में दास दासियां। तो बाबा ने एक बार ये भी सुनाया था, जब विवाह होता है ना, स्वयंवर होता है, तो जो राजकुमारी होगी वो तो दूसरे घर की होगी, और राजकुमार दूसरे घर का, तो राजकुमारी राजकुमार के पास आती है विवाह होते ही, तो अकेली थोड़ी आती है, इतनी दास दासियों के साथ आती है, क्योंकि वहां अगर उनको नई दास दासियां मिलेगी तो उनको क्या पता कैसे श्रृंगार करना है इसका, कैसे राजकुमारी को तैयार कराना है। तो वो दासियां भी साथ में आती थी दहेज में, तो दहेज में केवल धन नहीं आता था, दास दासियां भी आती थी। तो बाबा बताते हैं, तो यहाँ के राजाओं को इतने दास दासियां हैं, तो वहां कितने ढेर होंगे, सब पर अलग अलग अपनी चार्ज होती है, उनको अलग अलग जिम्मेदारी होती है, एक एक दास दासी को रहने का स्थान तो अलग होगा, हाँ वो कोई महल के अंदर तो नहीं रहेगी ना, उनका अलग क्वार्टर्स होंगे। यहाँ भी देखो सर्वेंट क्वार्टर्स तो अलग ही होते हैं ना, तो सत्युग में भी तो ऐसा ही होगा, रहने का स्थान अलग होगा, वह कोई राजा रानी जैसे सजाया हुआ तो नहीं होगा, उनके सर्वेंट क्वार्टर्स राजा रानी के महल जैसा तो सजाया हुआ नहीं होगा, जैसे सर्वेंट क्वार्टर्स होते हैं, अंदर आएंगे जरूर परंतु रहते सर्वेंट क्वार्टर्स में, महल में तो आएंगे लेकिन रहेंगे सर्वेंट क्वार्टर्स में। तो बाप अच्छी रीति समझाते हैं, क्या समझाते, अपने ऊपर रहम करो, अपने ऊपर रहम करो, हम ऊंच से ऊंच बने, हम अभी शूद्र से ब्राह्मण बने हैं, वो सौभाग्य फिर देवता बनेंगे, ये संगम योग बहुत कल्याणकारी है, तुम्हारी हर बात में कल्याण भरा हुआ है, भंडारे में भी योग में रह भोजन बनाए तो बहुतों का कल्याण भरा हुआ है। हाँ बाबा को ये बहुत था कि भोजन बनाने वाले बड़े योग युक्त होने चाहिए, अब भोजन बना रहे हैं और इधर उधर की बातें कर रहे हैं तो फिर भोजन में वही वाइब्रेशंस पहुंचेंगे। तो बाबा कहते हैं भोजन बनाते हैं बिल्कुल साइलेंस में हो, श्रीनाथ ही याद, श्रीनाथ द्वारे में भोजन बनाते हैं तो बिल्कुल ही साइलेंस में। श्रीनाथ द्वारे में क्या भोजन बनाते, हम गए थे देखने के लिए, उनके मुख पर पट्टी थी, पट्टी बंधी हुई थी। तिरुपति में भी हम गए थे, वहां भी जो लड्डू बना रहे थे, जो प्रसाद बना रहे थे, उनके मुख पर पट्टी बंधी होती है ताकि बोले नहीं, एक तो वे जर्म्स न जाए, लेकिन वो बोले नहीं, साइलेंस में बनाए, श्रीनाथ की याद में बनाए, तो ये बहुत उनके उनको ध्यान पर रख दिया जाता था। तो बाबा कहते हैं श्रीनाथ द्वारे में भोजन बनाते बिल्कुल ही साइलेंस में, श्रीनाथ ही याद रहता है, भक्त अपनी भक्ति में बहुत मस्त रहते हैं। तुमको फिर ज्ञान में मस्त रहना चाहिए, श्री कृष्ण की ऐसी भक्ति होती है बात मत पूछो। जो कट्टर भक्त होते हैं वो कैसी भक्ति करते हैं बात मत पूछो। वृंदावन में दो बच्चियां हैं, बाबा को किसने बताया होगा, वृंदावन में दो बच्चियां हैं पूरी भक्ति में, कहती है बस हम यहाँ ही रहेंगे। बहुत बड़े घर की है लेकिन वो वृंदावन में रहती है, श्री कृष्ण की भक्ति करती रहती है। छोटा सा कमरा मिला होगा, मैं बड़े घर की लेकिन वो छोटे से कमरे में रहती है, कहती हम तो यहीं रहेंगे, पूरी भक्ति में कहती है बस हम यहीं रहेंगे, यहाँ ही शरीर छोड़ेंगे श्री कृष्ण की याद में। उनको बहुत कहते हैं अच्छे मकान में चलकर रहो, ज्ञान लो, बोलती हम तो यहाँ ही रहेंगे, तो उसको कहेंगे भक्त शिरोमणि। इतनी भक्ति में वो विलीन है, उनको और कुछ नहीं चाहिए दुनिया का, तो उनको कहेंगे भक्त शिरोमणि। श्री कृष्ण पर कितना न्योछावर जाते हैं, अभी तुमको बाप पर न्योछावर जाना है। हम किस पर जाते हैं न्योछावर, बाप पर न्योछावर जाते हैं। तो पहले पहले शुरू में शिव बाबा पर कितने न्योछावर हुए, यज्ञ जब बना कितने न्योछावर हुए, ढेर के ढेर आए। जब इंडिया में आए, अभी वापस भारत आना था, तो उस समय आए तो बहुतों को अपना घर बार याद पड़ने लगा, हमारे माँ बाप कहाँ होंगे, क्या होंगे, क्या हो गया होगा, क्योंकि वो सारा वहाँ भारत में आए कहीं ना, तो उनको अपना घर याद आ गया, उनके माँ बाप याद आ गए, कितने से चले गए, घर बार याद पड़े तो चले गए। ग्रहचारी तो बहुतों पर आती है ना, कभी कैसी दशा, कभी कैसी दशा बैठती है, तो बाबा ने समझाया है कोई भी आते हैं तो वो लोग कहाँ आए हो। अब ये सेवा की बात, कोई आए हैं तो उनसे पूछो अब कहाँ आए हो, बाहर में बोर्ड देखा ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां, अब ये तो परिवार है ना, एक है निराकार परम पिता परमात्मा, दूसरा फिर है प्रजापिता ब्रह्मा, वो भी गया हुआ है, दोनों ही पिता है, तो ये सब उनके बच्चे हैं। दादा है शिव बाबा, ग्रैंडफादर है शिव बाबा, ब्रह्मा है बाप, शिव बाबा दादा ग्रैंडफादर। वर्षा उनसे मिलता है, वो राय देते हैं मुझे याद करो तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। कल्प पहले भी ऐसी राय दी थी गीता में है, तो मुझे याद कर तो मैं तेरे सर्व पापों से तुझे मुक्त कर दूंगा, तो कल्प पहले भी या ऐसे राय दी थी। कितनी ऊंच पढ़ाई है ये भी तुम्हारी बुद्धि में है, हम बाप से वर्षा ले रहे हैं। तुम बच्चे मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हो, तुम्हें जरूर दैवी गुण धारण करने हैं, तुम्हारा खान पान बोल चाल कितना रॉयल होना चाहिए। हर एक अपने से पूछे मेरा खान पान बोल चाल कितना रॉयल है। देवताएं कितना थोड़ा खाते हैं, उनमें कोई लालच थोड़ी रहती है, 36 प्रकार का भोजन बनते हैं, सत्युग में 36 प्रकार का भोजन बनेगा, खाते कितना थोड़ा है, अब इतनी वैरायटी होगी तो कितना खाएंगे, तो खाते कितना थोड़ा है। खान पान की लालच रखना इसको भी आसुरी चलन कहा जाता है, खान पान की लालच रखना, इसको भी आसुरी चलन कहा जाता है। दैवी गुण धारण करने हैं तो खान पान बड़ा शुद्ध और साधारण होना चाहिए। आजकल तो वैसे ही डॉक्टर्स बना करते ना, ये बहुत तला फला बहुत सारा भारी ये सब नहीं खाओ, तो शुद्ध भी हो साधारण भी होना चाहिए। परंतु माया ऐसी है जो एकदम पत्थर बुद्धि बना देती है, तो फिर पद भी ऐसा मिलेगा। बाप कहते हैं अपना कल्याण करने के लिए दैवी गुण धारण करो, अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे तो तुमको ही इजाफा मिलेगा, इनाम मिलेगा। बाप नहीं देते हैं इजाफा इनाम, पद अच्छा मिलेगा ये बाबा कहते, बाप नहीं देते हैं तो कौन देता है इजाफा, कौन पद देता है? तुम अपने पुरुषार्थ से पाते हो। बाबा देते हैं लेकिन तुम्हारे पुरुषार्थ से देते हैं ना, तुम अपने पुरुषार्थ से पाते हो। तो अपने को देखना चाहिए कहाँ तक हम सर्विस करते हैं, हम क्या बनेंगे। इस समय शरीर छूट जाए तो क्या मिलेगा, ये अपने अंदर देखना है। अभी अगर मैं आत्मा शरीर छोड़ती हूँ तो मेरा क्या पद होगा। बाबा से कोई पूछे तो बाबा झट बता दे कि इस एक्टिविटी से समझा जाता है ये फलाना पद पाएगा। पुरुषार्थ नहीं करते तो कल्प कल्पांतर के लिए अपने को घाटा डालते हैं। अंडरलाइन, पुरुषार्थ नहीं करते तो अब तो कल्प कल्प के लिए अपने को घाटा डालते हैं। अच्छी सर्विस करने वाले जरूर अच्छा पद पाएंगे, अंदर में मालूम रहता है ये दास दासी जाकर बनेंगे, खुद को भी मालूम रहेगा और दूसरे भी समझ सकते हैं ये पुरुषार्थ तो कुछ करता नहीं है, सारा दिन इधर उधर यही घूमता रहता है, सेवा भी नहीं करता, तो ये क्या जाकर पद पाएगा, दास दासी बनेगा। बाहर से कह नहीं सकते, स्कूल में भी स्टूडेंट समझते हैं हम सीनियर बनेंगे व जूनियर, अच्छा पद पाएंगे या जूनियर बनेंगे छोटा पद पाएंगे। यहाँ भी ऐसे है, सीनियर जो होंगे वो राजा रानी बनेंगे, जूनियर कम पद पाएंगे। साहूकारों में भी सीनियर और जूनियर होंगे ना, सत्युग में वो भी होंगे। दास दासियों में भी सीनियर और जूनियर होंगे, दास दासियों में भी क्या उनकी सेवा है उस अनुसार सीनियर और जूनियर होंगे। सीनियर वालों का दर्जा ऊंचा होता है, झाड़ू लगाने वाली दासी को कभी अंदर महल में आने का हुक्म नहीं रहता है, उनको बाहर ही झाड़ू लगानी अंदर नहीं, तो झाड़ू लगाने वाली दासी को कभी अंदर महल में आने का हुक्म नहीं रहता। तो इन सब बातों को तुम बच्चे अच्छी रीति समझ सकते हो, पिछाड़ी में और भी समझते जाएंगे। ऊंच बनाने वाले का फिर रिगार्ड भी रखना होता है, जो ऊंच बन रहे हैं और उनको बना रहे हैं तो बाबा के तो इनका रिगार्ड भी रखना होता है। देखो कुमार का है, दादी प्रकाश मणि को बाबा प्यार से कुमार का कहते थे, देखो कुमार का है वो सीनियर है तो रिगार्ड रखना चाहिए। तो बाप बच्चों का ध्यान खिंचवाते हैं, जो बच्चे महारथी हैं उनका रिगार्ड रखो, जिनको बाबा ने आगे रखा है उनका रिगार्ड रखो। रिगार्ड नहीं रखते हैं तो क्या हुआ, बाबा कहते रिगार्ड नहीं रखते तो अपने ऊपर पाप का बोझा चढ़ाते हैं, अपने बड़ों का रिगार्ड नहीं रखते हैं, क्या क्या कहते रहते हैं उनको भी। कई बार होता है वो छोटे समझ मैं ज्यादा होशियार हूँ तो बड़ों को भी क्या क्या कहते रहते हैं, तो बाबा कहते हैं वो क्या होगा उनका, उनके ऊपर पाप का बोझा चढ़ता है। क्योंकि जो सीनियर है जिनको बाबा ने आगे रखा है, भले होशियार न भी हो इतनी लेकिन बाबा ने उनको आगे रखा है ना, उनका रिगार्ड नहीं रखा तो बाबा कहते हैं पाप का बोझा चढ़ेगा। तो बाबा कहते हैं बड़ी खबरदारी, रिगार्ड नहीं रखते तो अपने ऊपर पाप का बोझा चढ़ाते हैं, ये सब बातें बाबा ध्यान में देते हैं। बड़ी खबरदारी चाहिए, नंबर वार किसका रिगार्ड कैसे रखना चाहिए। बाबा तो हर एक को जानते हैं ना, किसको कहें तो ट्रेटर बनने में भी देरी न करे। अभी रिगार्ड नहीं रखता, ऊटपटांग बोलता रहता है, जुबान पर जरा भी कंट्रोल नहीं है, हाँ डांटता ही रहता है, गुस्सा करता रहता है। अगर उसको कुछ बोलो ना तो फिर वो बाबा का ट्रेटर बन जाएगा। हमको बड़ों ने ऐसे कहा, हमको ऐसे कहा, रे भाई तुम अपने को सुधारो ना। सुधारना नहीं है, पर बड़ों ने हमको ऐसे क्यों कहा, ये आपको सुधारने के लिए कहा, नहीं तो क्यों कहते। तो बाबा कहते ट्रेटर बनने में भी देरी नहीं करे। फिर कुमारियों माताओं आदि पर भी बंधन आ जाते हैं, होती है अपनी भूल, लेकिन वो फिर बाहर जाकर के क्या करेंगे, वहां संस्था ही ऐसी है, संस्था ही ऐसे है, लोग ही ऐसे है, होगी अपनी भूल, पर अपनी भूल कभी स्वीकार नहीं करेंगे। तो बाबा कहते हैं फिर कुमारियों माताओं आदि पर भी बंधन आ जाते हैं, सितम सहन करने पड़ते हैं उन बेचारी माताओं बहनों को। बहुत करके माताएं लिखती है, क्या लिखती है, बाबा हमको ये बहुत तंग करते, हम क्या करें, हमको ये बहुत तंग करते, हम क्या करें। तो बाबा कहते हैं, देखो बाबा उनको क्या कहते, अरे तुम कोई जानवर थोड़ी हो जो जबरदस्ती करेंगे। अब शादी के लिए तंग करते हैं तो बाबा को लिखते थे, बाबा हम क्या करें। तो बाबा कहते, तुम बकरी हो क्या, तुमको बांध के बिठाएंगे क्या, तुमको जबरदस्ती कराएंगे, तुम हिम्मत रखो, तुम शेरनी शक्ति बनो, तुम बकरी मत बनो। ऐसे नहीं कि तुम बकरी बनो, अरे तुम कोई जानवर थोड़ी हो जो जबरदस्ती करेंगे। अंदर में दिल है तब पूछती है क्या करूं। सुना, अंदर में दिल है, मैं शादी करूं, मैं ये करूं, और फिर बाबा से पूछती है, बाबा मैं क्या करूं। अगर दिल है तो जरूर तो पूछेगी, अगर दिल नहीं है तो पूछेगी भी नहीं, उसको पता है बाबा ने क्या कहा है, मुनियों से सब पता चल जाता है। अब इसमें तो पूछने की तो बात ही नहीं है। आत्मा अपना मित्र अपना शत्रु है, कल भी बाबा ने कहा ना, आत्मा अपना मित्र अपना शत्रु है, जो चाहे सो करे, मालिक है वो। ऐसे तो जबरदस्ती तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता है, मालिक है। पूछना माना दिल है, बाबा मैं क्या करूं, अगर पूछती हो माना दिल है तो इसलिए पूछती हो। तो बाबा तो ये कहेंगे, बच्ची तुम जो चाहो सो करो, आपके ऊपर है, बाबा थोड़ी कुछ राय देंगे। बाबा कुछ राय दे और समझो उस पर चले और कल वो पछताए, बाबा की राय मैंने मान ली। हाँ, तो बाबा ऐसे राय नहीं देते, बाबा देखते हैं कैसी है वो आत्मा। पूछना माना दिल है, तो मुख्य बात है याद की, याद से ही तुम पावन बनते हो। ये लक्ष्मी नारायण नंबर वन पावन है ना, मम्मा कितनी सर्विस करती थी, ऐसा तो कोई कह नहीं सके हम मम्मा से भी होशियार है। कोई कहे मैं मम्मा भी कहा, दसवीं पास तो थी मम्मा केवल, ज्यादा तो पढ़ी नहीं, हम तो इतना पढ़े हुए, हम तो मम्मा से भी होशियार है कोई कह दे तो। अब मम्मा तो ज्ञान में सबसे तीखी थी, योग की कमी बहुतों में है, याद में रह नहीं सकते हैं, याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश कैसे होंगे। लॉ कहता है, अब लॉ क्या कहता है कि पिछाड़ी में याद में ही शरीर छोड़ना है, अंत में याद में ही शरीर छोड़ना है। लेकिन कब होगा वो, अगर बहुत काल का अभ्यास होगा, अगर बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो अंत में याद में शरीर नहीं छोड़ेंगे। तो पिछाड़ी में याद में शरीर छोड़ना है, शिव बाबा की याद में ही प्राण तन से निकले, एक बाप के सिवाय और कोई याद न आए, कहां भी आसक्ति न हो, ये प्रैक्टिस करनी होती है। हम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी होकर जाना है। बच्चों को बार बार समझाते रहते हैं, बहुत मीठा बनना है, यहाँ बार बार बाबा समझाते रहते हैं, बहुत मीठा बनना है, देवी गोदी होनी चाहिए, देह अभिमान का भूत होता है ना, अपने पर बहुत ध्यान रखना है, बहुत प्यार से चलना है, बाप को याद करो और चक्र को याद करो। चक्र का राज किसको समझाया तो ये तो वो भी वंडर खाएंगे, चक्र ऐसे चलता है, वंडर खाएंगे। 84 जन्मों की ही किसको याद नहीं रहती तो 84 लाख फिर कैसे याद आ सकते हैं, तो ख्याल में भी आने सके 84 लाख जन्म मिलने लिए, ख्याल में भी आने सके। इस चक्र को ही बुद्धि में याद रखो तो भी अहो सौभाग्य। अभी ये नाटक पूरा होता है, पुरानी दुनिया से वैराग्य होना चाहिए, बुद्धि योग शांति धाम सुख धाम में रहे। गीता में भी है ना, मन मना भाव, कोई भी गीता पाठी मन मना भाव का अर्थ नहीं जानते। मन मुझ में लगाओ, पर किसने कहा मन मुझ में लगा, वो तो श्री कृष्ण समझते हैं, तो इसलिए मन मना भाव का सही अर्थ कोई भी नहीं समझता। तुम बच्चे जानते हो भगवान वाच, देह के सभी संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। अब ये किसने कहा, स्वयं बाप ने कहा। कोई फिर कहते हम तो शास्त्रों को ही मानते हैं, हम तो ये मानेंगे श्री कृष्ण ने कहा, हम तो शास्त्रों को मानते हैं। भाई भगवान आए तो भी हम नहीं मानेंगे, भगवान खुद ही आ जाए और कहे कि कृष्ण भगवान नहीं है, शिव परमात्मा भगवान है, तो भी नहीं मानूंगा, कई ऐसे भी है। तो बाबा कहते हैं भाई भगवान है तो भी नहीं मानेंगे, बरोबर शास्त्र पढ़ते रहते हैं, भगवान आए हैं, राजयोग सिखला रहे हैं, स्थापना हो रही है, ये शास्त्र आदि सब है ही भक्ति मार्ग के। भगवान का निश्चय हो तो वर्षा लेने लग पड़े, निश्चय ही नहीं है तो वर्षा भी क्या लेंगे, फिर भक्ति भी उड़ जाए, छूट जाए। परंतु जब निश्चय हो ना, हाँ सारी बात है किसकी, निश्चय की। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, देवता बनने के लिए बहुत रॉयल संस्कार धारण करने हैं। देवता बनने के लिए बहुत रॉयल संस्कार धारण करने हैं, खान पान बहुत शुद्ध और साधारण रखना है, लालच नहीं करनी है, अपना कल्याण करने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं। दूसरा, अपने ऊपर ध्यान रखते सबके साथ बहुत प्यार से चलना है, अपने ऊपर ध्यान रखते सबके साथ बहुत प्यार से चलना है, अपने से जो सीनियर है उनका रिगार्ड जरूर रखना है, बहुत बहुत मीठा बनना है, बे अभिमान में नहीं आना है। कितनी बड़ी शिक्षाएं बाबा ने आज दी है। वरदान, बीती हुई बातों को रहम दिल बन समाने वाले शुभ चिंतक भव। बीती हुई बातों को रहम दिल बन समाने वाले शुभ चिंतक भव। यदि किसी की बीती हुई कमजोरी की बातें कोई सुनाए तो शुभ भावना से किनारा कर लो। जब वो पुरानी पुरानी बातें सुना रहा तो बाबा कहते शुभ भावना से किनारा कर लो, व्यर्थ चिंतन या कमजोरी की बातें आपस में नहीं चलनी चाहिए। बीती हुई बातों को रहम दिल बनकर संभालो, समाकर शुभ भावना से उस आत्मा को के प्रति मनसा सेवा करते रहो। भले संस्कारों के वश कोई उल्टा कहता करता या सुनता है तो उसे परिवर्तन करो, 1 से 2 तक 2 से 3 तक ऐसे व्यर्थ बातों की माला न हो जाए। ऐसा अटेंशन रखना अर्थात शुभ चिंतक बनना है, संभालो अपने अंदर ऐसा अटेंशन रखना अर्थात शुभ चिंतक बनना। स्लोगन, संतुष्ट मुनि बनो तो प्रभु प्रिय, लोक प्रिय और स्वयं प्रिय बन जाएंगे। तो प्रभु प्रिय, लोक प्रिय, स्वयं प्रिय बनने के लिए क्या करना होगा? संतुष्ट मणि बनना होगा। संतुष्ट मणि बनो तो प्रभु प्रिय, लोक प्रिय और स्वयं प्रिय बन जाएंगे। अव्यक्त इशारा, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। उसके लिए क्या करो? जैसे शरीर और आत्मा कंबाइंड है तो जीवन है। यदि आत्मा शरीर से अलग हो जाए तो जीवन समाप्त हो जाता। ऐसे कर्म योगी जीवन अर्थात कर्म योग के बिना नहीं, योग कर्म के बिना नहीं, सदा कंबाइंड हो तो सफलता मिलती रहेगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चलो, बाबा ने आज बहुत कुछ दोष दे दिया है, उस पर अमल करना है। ओम शांति।
शांति स्तंभ पर मोबाइल मिला है?
कहाँ मिला?
शांति स्तंभ पर, स्विच ऑफ है।
हाँ लो जी, शांति स्तंभ पर ये मोबाइल मिला है। जिस किसी का भी हो, वो आत्मा बहुत योग युक्त होगी जो अपना मोबाइल ही भूल गई। ओम शांति।